सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उलहक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
वेलकम टू सोच विचार। आज ये जो पॉडकास्ट होगा ये एक जॉइंट पॉडकास्ट होगा विद हफ्ते की सीधी बात जो अदनान रसूल अटलांटा से करते हैं। अदनान रसूल एक पीएचडी स्टूडेंट हैं, पीएचडी कंप्लीट करने वाले हैं पॉलिटिक्स में, इनका पॉलिटिक्स पे बहुत अबूर है। तो हमने सोचा कि एक जॉइंट पॉडकास्ट किया जाए, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जॉइंट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इकट्ठा मिलकर थोड़ा सा काम किया जाए। अदनान साहब इंट्रोड्यूस कीजिए अपना पॉडकास्ट।
Sir, first of all, thank you for having this initiative. Welcome to my listeners to Hafte Ki Seedhi Baat. And this time, hum log collaboration mein kar rahe hain with Dr. Nadeem's podcast. Is sari baat ka jis tarah jo maksad tha, wo jis tarah Dr. Nadeem ne bhi mention kiya, is to show people ki ji kam az kam cheezein agar ikatthi ki jaye तो वो बड़ी बेहतर हो सकती हैं। और हमारी उम्मीद है कि हम लोग इस दफ़ा जो पॉडकास्ट आपको प्रेजेंट करने लगे हैं वो एक इंटरेस्टिंग होगा और डिफरेंट टेक से होगा, जिसके अंदर ज़रा बातें हम लोग एकेडमिक लेवल की भी हैं बट रियलिटी से काफ़ी सीरियसली रिलेटेड हैं। तो सर टेक द लीड।
जनाब अरनान साहब, आपसे जो बात हो रही थी कल, जो मैं आपके पॉडकास्ट से बड़ा इंट्रीग हुआ, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होने जा रही है, और आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, तो आप थोड़ा सा समराइज कर दें कि आज की जो सिचुएशन जो आज हम देख रहे हैं इसको बड़े ब्रीफली फ्रॉम अ क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट समबडी हू स्टडीड पॉलिटिकल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समराइज करें कि ये जो हो रहा है ये सब कुछ इसका असली जुज़ क्या है।
सर उसके अंदर जिस तरह हम लोगों ने कल परसों भी बात की थी, जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हमारी डेमोक्रेसी टेक्निकली स्ट्रेंथन हो रही है। हर चीज़ के अंदर जो ये प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर टाइम भी लगता है, मेच्योरिटी भी आती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। बट अगर आप नोटिस करें फॉर द लास्ट 35 to 40 ईयर्स रफली पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देर एसेंशली फैमिली ओरिएंटेड डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज। नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एवर क्या कहते हैं प्रोफेशनलाइज्ड या एक्चुअली ग्रू एज पॉलिटिकल पार्टीज। दे हैव बीन मोर ऑन द लाइंस ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली बिजनेसेस। अब उसमें यह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग उस पॉइंट पे आ गए हैं कि जहां हमारे लोग भी तंग हैं। जो आपकी एक ग्रोइंग मिडिल क्लास है, मैंने पहले भी अपनी एक पॉडकास्ट में कहा था कि जी मिडिल क्लास का मतलब ये नहीं होता कि वो एक सेट फिगर जो आपने शहरों के अंदर रखा हुआ है। मिडिल क्लास डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। वो मिडिल क्लास का एपेटाइट खत्म हो चुका हुआ है टू डील विद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। और जो आज माशाल्लाह हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चलूं, क्योंकि मेरी अपना नून लीग से अच्छी खासी अपना क्लोजनेस भी रही है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द 2013 इलेक्शन। देयर वाज अ सीरियस डिस्कशन उस जमाने में अभी कि चौधरी निसार एंड ख्वाजा आसिफ वर द टू कंटेंडर्स फॉर सीएम पंजाब, क्योंकि छोटे मियाँ साहब हैड बीन सीएम पंजाब फॉर गॉड नोज हाउ लॉन्ग। माशाल्लाह 97 में भी थे, 99 में उतरे, फिर उसके बाद 2008 में सीएम बने, फिर 2013 तक सीएम थे। तो देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कि जी या तो ख्वाजा आसिफ होंगे या चौधरी निसार होंगे। चौधरी निसार थॉट के इनका हक ज़्यादा बनता है। अब बात यह है कि अगर आपका आप अगर लॉजिकली पार्टी प्रोफेशनलाइज करना चाहें ना, तो आप इनमें से दो में से पार्टी में वोट लें और इनमें से एक को बना दें, राइट? बट इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी ऑफ दैट, नून लीग डिसाइडेड कि जी देखें ये तो रफड़ पड़ जाएगा, तो हम यूं करते हैं कि बजाय के पार्टी को प्रोफेशनलाइज करने, हम लोग वो डबल डाउन करते हैं उसी मॉडल के ऊपर के जहां पे छोटे मियां साहब कंटिन्यूज। सो एसेंशियली छोटे मियां साहब हैज बीन रूलिंग अ प्रोविंस नाउ फॉर 10 ईयर्स, ठीक है? तो वो चौधरी निसार जैसा बंदा अगर बिफर के कहता है कि यार ठीक है मैंने नहीं रहना, मेरे से नहीं होता, तो टेक्निकली स्पीकिंग दैट इज नॉट अ बैड थिंग। वो तो पार्टी को स्ट्रेंथन करने के चक्कर में है ना कि भाई मेरी भी बारी आए, मैं प्रोफेशनलाइज करो, आगे चलो। दैट इज वेयर वी आर।
इमरान साहब ये बात बताएं कि ये क्या वजह है कि हमारी डेमोक्रेसी धक्का स्टार्ट डेमोक्रेसी के हम हुकूमत को इलेक्ट करते हैं, मेरा ख्याल साल नहीं लगता तो हम तंग आ जाते हैं और स्टोरीज निकलनी शुरू हो जाती हैं और ड्रामे शुरू हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि मिलिट्री कुछ तंग कर रही है, कुछ इस्टेब्लिशमेंट की बातें करते हैं, पर मैं देखता हूँ कि साल के बाद डेमोक्रेसी से हम तंग आ जाते हैं, डेमोक्रेट खुद डेमोक्रेसी को छोड़ देते हैं। जैसे कि मियाँ साहब ने कभी फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया, बीबी कभी फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करती थी, ये हमेशा शहबाज ने पता नहीं कितने पोर्टफोलियो हाथ में रखे हुए हैं। तो ये हमारी डेमोक्रेसी क्या है, ये चलती क्यों नहीं है?
सर उसके अंदर ना वही बात आ जाती है, वो देखें चौर्स की बहुत बहुत बड़ा नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, जवर्सकी ने तंग आके 2000 में चार के अंदर या 2002 में किताब लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि भाई देखें मसला ये है कि डेमोक्रेसी बड़ी खूबसूरत,
किताब का नाम भी बता दे।
हाँ सर, किताब का नाम मेरे ज़हन से इस वक्त निकल रहा है स्पेसिफिकली, इट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी और दूसरी वाली उनकी किताब एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेमोक्रेसी थी। उसमें अब यह है कि जो बात उन्होंने की, जो पूरा मकसद था उनका, वो ये था कि जनाबे वाला डेमोक्रेसी जो है ना, एक उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना हमारी, वो डेमोक्रेसी के साथ बिल्कुल डिलूजनल है। हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि मेरी नौकरी भी आ जाएगी, इकोनॉमी भी चल पड़ेगी, दुनिया जहान की 36 और चीज़ें जो ख़राब चल रही हैं वो सारी जंप स्टार्ट हो जाएंगी, नंबर वन। नंबर टू, फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर इलेक्शन हो गया तो जो गवर्नमेंट इन पावर 6 महीने पहले आई है वो मेरी हर चीज़ डिलीवर करनी शुरू कर दे, विदाउट रियलाइजिंग कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आज से 3 या 4 साल बाद आएगा। वो हमारी इन अ वे, इन वेरी सिंपलिस्टिक टर्म्स, जो चवर्सकी की टर्म्स हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेमोक्रेसी बड़ी डिलूजनल है। हम समझते हैं क्योंकि मैंने जाके डब्बे में वोट डाल दिया ना तो बस अब मेरे सारे मसले हल करो, ये आपकी ड्यूटी है, विच इज़ नॉट द केस। गोज बैक टू द थिंग दैट यू वर मेंशनिंग अर्लियर एंड वी डिस्कस्ड, सर्विस डिलीवरी वाली बात, कि एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन बुनियादी तौर पे सर्विस डिलीवरी के नंबर हम लोग दे रहे होते हैं अगले को जो कि हुकूमत में आना चाहता है।
पर ये बात बताइए कि ये जो है क्या कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को जरा प्लीज आप, यू आप माशाल्लाह पॉलिटिकल साइंस, आप जरा डिफाइन तो करें ना। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बन गया है कि जी बस एक बंदे को इलेक्ट कर दो 5 साल, फिर वो चाहे हुकूमत अकबर बादशाह की तरह करे चाहे जिस तरह भी करे, वो उसको 5 साल के लिए पक्का रहने दो, छेड़ो ही ना। हमारे जो इंटेलेक्चुअल सारे कहते हैं इसको छेड़ो ना, 5 साल के लिए पक्का रहने दो, चाहे ये कैबिनेट चलाए ना चलाए, चाहे ये पार्लियामेंट में बैठे ना बैठे। क्या डेमोक्रेसी यही होती है? और इसके साथ साथ जो मुझे एक और चीज़ याद आती है, उस पर भी ज़रा कॉमेंट कर दें कि फरीद जक्रिया ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी, मुझे याद है, इलिबरल डेमोक्रेसी। कह रहा था कि डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं कि अच्छी तरफ जाए, गलत तरफ भी जा सकती है, ठीक है। और ये बहुत पुरानी डिबेट मुझे नज़र आ रही है, फेडरलिस्ट पेपर्स में बड़ा इसका जिक्र किया था, गिबन्स ने जिक्र किया था कि जी डेमोक्रेसी जो है, ख़ास तौर पे एक डेमोक्रेसी जिसके अंदर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखी कि जी अगर आप डेमोक्रेसी खुला हाथ चलने देते हैं सिर्फ पॉपुलर वोट्स, तो वो तो रोम में चल चुका था, रोम में डिजास्टर हो गया था उससे। क्या ये बातें सही हैं, बताइए
सर। उसके अंदर जो है ना, दिस गोज बैक टू द वही बात है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए बात यह है कि डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन आज या कल से तो नहीं हो रही है, तो हजारों साल से, लिटरली हजारों साल से हो रही है, ठीक है जनाब।
रोम अब एथन से हो रही है,
एथन से हो रही है ना। अब मसला यह है कि डेमोक्रेसी को आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे भी कर सकते हैं, सेकंड चॉइस वोटिंग पे भी कर सकते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट पे भी कर सकते हैं, सिंगल वोट पे भी कर सकते हैं। इसको डिफाइन करना जो है ना, दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। नाउ अगर हम लोग मेजर पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो या इकोनॉमिक थियरिस्ट वगैरह हैं, उन सब की अंडरस्टैंडिंग से चलें कि जी हाँ डेमोक्रेसी क्या है, कहाँ से शुरू करना है इसको, तो आप शुरू करते हैं तो होल आइडिया ऑफ जो डाल ने कहा था कि एज लॉन्ग एज यू हैव ए पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, दैट कैन बी कंसिडर्ड डेमोक्रेसी। सो दैट इज नंबर वन। नंबर टू, एवरीबडी इन अ कंट्री गेट्स टू हैव अ से एंड गेट्स टू हैव अ वोट, that is also a part of democracy. So number one, number two, peaceful transfer of power, number two, voting. जो तीसरी बात है वो हम लोगों ने recently करनी शुरू की है, जो कि इतनी पुरानी नहीं है, कि जहाँ पे आपके पास एक system हो सके जहाँ पे equal right to vote हो, equal outcome of representation हो, और जहाँ पे fairness और equality के ऊपर focus हो ना, that is also a significant part of democracy. Hamara masla ye hai ki wo jo last wala portion hai na, we don't take that into account. Secondly, institutional sustenance jo hai na, jo institutional sustainability hai for periodic elections, that is a fundamental basic of democracy. Again, jisko hum log koi lift nahi karate hain. तो हम लोग अगर डेमोक्रेसी की अगर 4 या 5 उस बनाए जाएं, तो उनमें से हम लोग 2 पे तो तैयार बैठे हैं कि हाँ जी इलेक्शन भी कराओ और हर बंदे को वोट भी दो, बट देन अगेन क्या वो ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुल है, नंबर वन। नंबर टू, क्या हमारी उसके साथ एक्सपेक्टेशंस डिसेंट और डिग्निफाइड हैं, वन। नंबर टू। नंबर थ्री, जो रिप्रेजेंटेशन से लोग आ रहे हैं, आर दे वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग अ फेयर एंड बैलेंस्ड एक इक्वालिटी सिस्टम जिसके अंदर हर बंदे को इक्वली मिले? नहीं, वो भी ट्रू नहीं है। अब यानी फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब का आधा बजट लाहौर में लग जाता है तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी ना। क्योंकि वो इक्वल अटेनमेंट वाली बात खत्म हो गई है फिर उसमें से।
इसमें एक बात मैं और ऐड करूं, फुकुयामा की जो नई किताबें एक दो, ये जो पॉलिटिकल ऑर्डर वाली किताबें दो किताबें उसने टू वॉल्यूम जो लिखा है, उसमें जो मुझे बात समझ आई है वो दो तीन बातें कहता है कि जी एक तो बहुत ज़रूरी है कि एक पहले क्या कहते हैं जो एक मुझे बात याद है बाकी तो खैर छोड़ें, कि जी रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो। पर रूल ऑफ लॉ वो डिफाइन बड़े मज़दार तरीके से कहता है, रूल ऑफ लॉ हम जैसे डिफाइन करते हैं कि हम सब लॉ, वो कहता नहीं, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ शुरू होता है जबकि जो एग्जीक्यूटिव है, जो हुकूमत है, वो अपने आप को लॉ के नीचे लेके आए। अगर हुकूमत अपने ऊपर लॉ नहीं लागू करती तो वो फिर डेमोक्रेसी बात नहीं बनती, ठीक है ना। तो ये अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे याद आती है फेडरलिस्ट पेपर्स से, ये हैमिल्टन और क्या कहते हैं मेडिसन और जे ने लिखी थी, बड़े आलिम थे, बड़े अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए फेडरलिस्ट पेपर्स लिखा, और ये मेरा तो ख्याल है बहुत पढ़ने के काबिल किताब है। उन्होंने बड़ी डिस्कशन और डिबेट की कि डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि हमने प्रेसिडेंट की पावर लिमिट की है, हमने पार्लियामेंट की पावर लिमिट की है, हमने सब कुछ किया है, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि एक डेमोक्रेसी के लिए एक रूल ऑफ लॉ हो और ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम हो। जो कि मोंटेस्क्यू की किताब याद आती है, मोंटेस्क्यू कहता था कि जी हमें चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए, हमें सेपरेशन ऑफ पावर चाहिए। अब बताइए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, आपने माशाल्लाह इस पे आपका थीसिस इस पे आपने इसका मुआयना किया है, क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बताइए कैसे शुरू हुई, क्या इसके इंटेलेक्चुअल ओरिजिन्स हैं, कैसे कंपेयर करती है दुनिया से, और हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि नहीं।
सर ये सारी जो बातें आपने की है ना, दीज आर वेरी क्रिटिकल, ये एक बहुत बड़ा इशू हाईलाइट करती हैं जो हम लोग डेमोक्रेटिक डिस्कशन के ऊपर लेके आते हैं कि जी जनाबे वाला, पहली बात यह है कि वन साइज फिट्स ऑल वाली गेम नहीं चलती। अब द आइडिया के जो द अमेरिकन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज द सेम इज द ब्रिटिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, या जो आपका फ्रेंच मॉडल है वो अपना हर जगह चलेगा, वो एक नंबर वन, वो दैट इज नॉट ट्रू उसमें से। बट जो इनके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये याद रखने का है, जो रूल ऑफ लॉ वाली बात है ना, वो कॉमन होने की जरूरत है। अब रूल ऑफ लॉ इज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिकली ऑल डेवलप्ड वर्ल्ड, ठीक है जनाब। उसके अंदर यह है कि अमेरिका के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस और सेपरेशन ऑफ पावर्स इज के बगैर आपका मुल्क चल ही नहीं सकता। सेम इज़ द केस इन फ्रांस, सेम इज़ द केस इन इंग्लैंड, सेम इज़ द केस इन जर्मनी। हमारे पास मसला यह है कि हम लोग नंबर वन अपनी डेमोक्रेसी को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं वन साइज फिट्स ऑल के अंदर, कि जी जैसे वहाँ पे है ना वैसे करनी है हमने। नहीं, हमारे रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, हमारे इशूज डिफरेंट हैं,
कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है,
कल्चर डिफरेंट है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट। नंबर टू, जो बात एक्चुअली कॉमन रखने की है ना, जिसको आपने एक्चुअली रेप्लिकेट करना है, वो है रूल ऑफ लॉ वाली बात। अब रूल ऑफ लॉ वाली बात में कल भी हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जी चेक्स एंड बैलेंसेस की सारी बात है। अब मसला वही आ जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके डिजाइन हुए हुए हैं वो चेक्स एंड बैलेंसेस के लिहाज से तो माशाल्लाह हुए ही नहीं हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, मैं अब मेरी पूरी डिसर्टेशन इस मामले में, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के तीन या चार बेसिक मॉडल्स होते हैं। एक होता है सिंगल पार्टी मॉडल, एक होता है मल्टी पार्टी मॉडल, जिसमें से मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक मॉडल होता है या सिविल वॉर मॉडल होता है, और तीसरा मॉडल होता है जो आपका होता है ऑटोक्रेटिक या टेक्नोक्रेटिक डिजाइन, ठीक है। अब पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ हुआ है वो ओरिजिनली हुआ हुआ है 1950s के अंदर, जो बेसिक इसका ढांचा खड़ा हुआ था ना वो 1950s के अंदर हुआ था। उस ढांचे के ऊपर हम लोगों ने उसको बड़ा सवियर अपग्रेड दिया था 1970s के अंदर, बट ओरिजिनल बेसिस वही है। अब वो जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है बुनियादी तौर पर उन लोगों ने जिन लोगों का पोलिटिकल स्टेक किसी किस्म का नहीं था, ना वो पॉलिटिशन थे मेजॉरिटी, ना वो लोग थे जिन लोगों ने जाके लोगों को शक्लें दिखानी थी छोटे छोटे इलाकों के अंदर और वोट लेके आना था। ये वो लोग थे जो हुकूमत को चला रहे थे बुनियादी तौर पे एक ऑटोक्रेटिक रूल के अंदर। अब उनका लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन और उसके चेक्स और बैलेंसेस आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक मॉडल में, जो हम लोग एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हर बंदा बात करता है 73 का आइन, 73 के आइन के मुताबिक भी जो चेक्स एंड बैलेंसेस जनाब लिखे हुए हैं ना, वो बुनियादी तौर पे इंतहाई लूस लिखे हुए हैं इन फेवर ऑफ द सिंगल पार्टी गवर्नमेंट जो उस टाइम पे चल रही थी, जो कि माशाल्लाह भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी।
बिल्कुल सही।
अब जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन इंतहाई बायस तरीके से डिजाइन किया हुआ है हर दफा, और जब भी माशाल्लाह आपके पास नई गवर्नमेंट आती है, चाहे वो मुशर्रफ साहब हों, चाहे वो बीबी हों, चाहे वो मियां साहब हों, अब उनके अंदर उन लोगों ने आके कॉन्स्टिट्यूशन को कोई मेजर चेंजेस नहीं दी, क्योंकि हर बंदा ये कहता था कि हाँ यार सिंगल पार्टी, हम लोग लार्जेस्ट पार्टी हैं, वील रन इट लाइक अ सिंगल पार्टी स्टेट। फंडामेंटली मसला वहीं पे फ्लॉड है ना, डायनेस्टिक दिमाग है तो उसके अंदर कि ये मेरी जागीर है तो सिंगल पार्टी स्ट्रक्चर से चलाओ चाहे चेक्स और बैलेंसेस ना हो। सेकेंडली वही बात कल वाली कि जनाबे वाला लेजिस्लेचर का काम है कि वो लेजिस्लेट करे, एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो एक्चुअली अपनी अथॉरिटीज को इस्तेमाल करके चीजों को इम्प्लीमेंट करवाए। अब अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से ओरिजिनेट कर रहा है तो वो लेजिस्लेट करे या वो मुल्क चलाए।
मुझे तो याद है मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लिखा था कि यार ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं ठीक, और हमने उसको उठा के वैसे ही अडॉप्ट कर लिया। पर एक और चीज़ देखें ना, अब ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ, चलो ये भी मान लिया, पर मुझे ये बात बताएं क्या लोकल गवर्नमेंट के बगैर इलेक्शन सॉरी डेमोक्रेसी आ सकती है?
सर लोकल गवर्नमेंट के बगैर डेमोक्रेसी फंडामेंटली तो की नहीं बनती है ना, फिर
फ्लॉड है ना, बिल्कुल फ्लॉड है,
बिल्कुल तो नहीं बनती सर। मुझे तो देखें लोकल डेमोक्रेसी का फंडामेंटल आइडिया यह है कि जी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए एट ऑल लेवल्स। अगर लोकल बंदे को पिंड के अंदर या आप गली के अंदर या काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं अपने फाइनेंसिस के कंट्रोल के ऊपर, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है?
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा तो एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बन जाती है जो हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये जनाब आपने जैसे बार बार कहा है और बड़ी अच्छी बात की, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। मुझे अब याद आता है कि अली चीमा एक लम्स में प्रोफेसर है, उसने कुछ बंदों के साथ मिलकर एक पेपर किया जिसके अंदर उसने शो किया है कि जी पाकिस्तान में जितनी इलेक्शन हुई हैं उसमें कोई चंद फैमिलीज़ हैं जो हावी हैं, और हर फैमिली से मेरा ख्याल 5-5, 10-10 बंदे आते हैं, और कुछ बंदे वो एक दूसरी पार्टी में भी डाल देते हैं, इधर भी रह जाते हैं, मिनिस्टर हर वक्त उनका कोई ना कोई बंदा रहता है, इस साइड से या उस साइड से कोई ना कोई मिनिस्टर रहता है। अच्छा इस वजह से लोग डर के वोट देते हैं उनको, बिकॉज पता है यार मिनिस्टर तो इनकी फैमिली नहीं लगना है, ठीक है तो हम तो कुछ कोई काम होगा तो इनके पास ही जाना पड़ेगा। तो इसको वो एक टर्म है मेरा ख्याल आप लोगों ने इन्वेंट की हुई है पॉलिटिक्स के लोगों ने कि जी पैट्रिमोनियल डेमोक्रेसी, कि जी वो डर के लोग अपने राइट्स के लिए इन लोगों को वोट देते हैं बिकॉज ये डायनेस्टीज हावी रहती हैं। अब ये डायनेस्टीज का क्या किया जा सकता है, कोई तरीका है, कोई तोड़ है इनका कि नहीं?
सर डायनेस्टीज को तोड़ना जो है ना, नंबर वन लेता है बड़ा टाइम, और उसके अंदर मैं उसके अंदर अभी जाता हूँ। मुझे जो पहले आपने दूसरी बात की है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग लंबी चौड़ी बातें करने से, यानी हम लोग फैमिलीज की जो बातें कर रहे हैं, आप एक बड़ी सिंपल मिसाल लें। देखें असद उमर साहब हैं तहरीक इंसाफ में, जुबैर साहब हैं माशाल्लाह गवर्नर सिंध, वो हैं नून लीग में, इनके तीसरे भाई हैं अदनान उमर, वो जरदारी साहब के बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, वो कराची स्टॉक एक्सचेंज के चेयर हुआ करते थे, ठीक है जनाब। अब बात सर ये है कि ये एक ही फैमिली है ना, और ये इकट्ठे भाई बैठ के एक दूसरे को, अब मुझे आप ये बता रहे हैं कि ये तीनों भाई हैं माशाल्लाह जिनके वालिद साहब एक बहुत सीनियर जर्नल हुआ करते थे, मुझे आप ये बता रहे हैं कि ये तीनों भाई एक्चुअली फंडामेंटली आइडियोलॉजिकली एक बात पे बिलीव नहीं करते सर?
बिल्कुल,
यानी वही बात है ना कि थोक लगा रहे हैं किसको लगा रहे हैं।
बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट। देखिए एक और बड़ी मजेदार चीज़, अगर आप गौर करें जो ब्रिटिश ट्रेडिशन थी ना, जिसमें देखें एक जिसमें एक और चीज़ लानी चाहिए कि डेमोक्रेसी चलती है नॉर्म्स के साथ, ठीक है। नॉर्म्स जो होते हैं वो होते हैं एक किस्म की कल्चरल वैल्यूज़ जिसके अंदर लोग अपना गुजारा करते हैं। अगर आप देखें बर्तानिया में 18वीं सदी में या कुछ, वो फैमिलीज बटी होती थी टोरी और विग, और अगर वो एक विग फैमिली का बच्चा टोरी बन जाता था तो बाप उससे बात करना बंद करता था, फैमिली उसको निकाल देती थी। सिमिलरली आपने देखा है यहाँ कैनेडीज हैं वो एक पॉलिटिकल फैमिली है, या बुशेज हैं पॉलिटिकल फैमिली है, वो अपना कैनेडीज डेमोक्रेट रहेंगे, बुश रिपब्लिकन रहेंगे, वो क्रॉस नहीं करते इस तरह, ठीक है। और साइमल्टेनियस तो कभी क्रॉस, हमारे यहाँ ये निज़ाम जो है, अगर हमारे पास नॉर्म नहीं है तो क्या हम इसकी लॉ नहीं बनानी चाहिए कि आप नहीं कर सकते ये काम?
सर टेक्निकली हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसमें मसला ये है कि ये सारी की सारी आइडियोलॉजिकल बातें हैं। जब आपकी आइडियोलॉजी अगर इतनी, और उसमें वही बात आती है कि आपकी आइडियोलॉजी इतनी वीक है कि अगला बंदा एक हफ्ते के बाद कहता है नहीं यार आपकी आइडियोलॉजी बारे में नहीं आ रही, चलो मैं उस आइडियोलॉजी में चला जाता हूँ। जिससे बड़ा सवाल यह है कि अगर आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज को अगर हम लोग रख के चलें, मास सवाए जो आपकी डीपली राइट विंग रिलीजियस पार्टीज हैं, इनमें से किसी एक की आइडियोलॉजी है क्या? यानी अगर बुनियादी तौर पे अगर किसी बंदे को कहा जाए कि जी आप यूं करें कि तीन लाइंस के अंदर एक्सप्लेन करें कि नून लीग की आइडियोलॉजी का निचोड़ क्या है और पीपल्स पार्टी का क्या है, तहरीक इंसाफ का क्या है, तो वो बंदा आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि इन तीनों पार्टीज का जो बुनियादी आइडियोलॉजी है ना उसमें फ़र्क क्या है। यानी आप देखें, नून लीग ने वो फैसले लिए हैं जो पीपल्स पार्टी से नहीं होते थे, पीपल्स पार्टी ने वो फैसले लिए हैं जो कि ईमान से नून लीग से नहीं होते हैं। अब 18वीं तरमीम वाला जो फैसला था वो पीपल्स पार्टी से नोबडी एक्सपेक्टेड देम टू एक्चुअली डू इट, दे डिड इट। नून लीग डिड समथिंग अबाउट अपना सलमान तासीर के जो अपना मर्डर्स थे उसके ऊपर डिसीजन नून लीग की सपोर्ट बेस, मैं कहता हूँ, बिलीव ही नहीं कर सकती थी कि वो लोग ये इस तरह का स्टेप ले सकते हैं। ठीक है जनाब, अब उसमें यह है कि हर पार्टी ऐसे स्टेप करती है जिसके अंदर आइडियोलॉजिकल लाइंस आपको जवाब मिलता नहीं है। फिर तो पहली बात है, आइडियोलॉजी तो है ही नहीं ना सिरे से। दिस इज व्हाट इट इज, गोइंग बैक टू व्हाट यू सेड, इट्स अ नियो पैट्रिमोनियल सिस्टम, इट्स अ वेरी एडवांस सोफिस्टिकेटेड पैट्रनेज सिस्टम, जहां पे आपने अगर इस सिस्टम में सर्वाइव करना है यू नीड टू फाइंड अ वे इन। वंस यू आर इन, यू आर इन।
पर अदनान साहब बताइए, इसमें रिफॉर्म क्या लाया जाए? कुछ ना कुछ तो हम कर सकते हैं, कोई इस्लाहात तो कर सकते हैं कि इसको हम ठीक करें कि नहीं कर सकते।
सर कर सकते हैं, बहुत इस्लाहात कर सकते हैं, मसला ये है वो करने वाले करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते।
वो छोड़ें, देखें हमारा काम है, आपका काम है एज अ मुफक्किर, एज एन इंटेलेक्चुअल, माशाल्लाह पीएचडी आप कर रहे हैं, कि आपका काम है कौम को एजुकेट करना, और हमारे पॉडकास्ट का मतलब ये, हमने कौम को एजुकेट करना है। और मैंने देखा है कि अगर हम कौम को एजुकेट करें, मैंने वो किताब भी लिखी है, आप जरूर देखिएगा, लुकिंग बैक, उसमें मैं यही कहता हूँ कि देखिए जो रेवोल्यूशन आती हैं पहले आइडिया में आती है, फिर आके पोलिटिकल पार्टीज में आती है, फिर वो फैल जाती है। तो हम, आप बताएं हमें एज अ मुफक्किर के क्या करना चाहिए।
सर नहीं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तीन किस्म के रिफॉर्म्स की हम लोगों को अर्जेंट जरूरत है। लाइक वो कहते हैं ना, जैसा इंग्लिश में देयर इज अ फ्रेज कि वी नीड देम यस्टरडे। एक हम लोगों को बहुत सीरियस किस्म का ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म चाहिए।
गुड पॉइंट।
मैसिव ब्यूरोक्रेसी का हम लोगों को अपना चाहिए, वो आप वाली बात।
सॉरी, ब्यूरोक्रेसी, देखें मैं, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर थोड़ा सा। ब्यूरोक्रेसी का क्या ताल्लुक है डेमोक्रेसी से?
सर ब्यूरोक्रेसी इज द लिंचपिन ऑफ डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, स्टेबल ब्यूरोक्रेसी के बगैर ना, मैं कहता हूँ, डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। उसके बगैर तो सर डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती है, डेमोक्रेसी तो फिर डेमोक्रेसी है ना।
नहीं, पर हमारे यहाँ तो जो फीलिंग है हमारे खासतौर पे इंटेलेक्चुअल्स में, वो ये है कि डेमोक्रेसी तो प्राइम मिनिस्टर की लौंडी है घर की, डेमोक्रेसी तो प्राइम मिनिस्टर के नौकर है।
एंड सर यही सबसे बड़ा मसला है। डेमोक्रेसी का काम ये नहीं है कि वो मियाँ साहब के अपना पाउंड बाती रहे, उसका काम ये है कि सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करे और मियाँ साहब को पॉलिसी ऑप्शंस उनके सामने रखे। ब्यूरोक्रेसी का काम है टू रन एंड ऑपरेट सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स विद इन द कंट्री। उनका काम ये नहीं है टू गेट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल डिसीजन एंड टू राइट प्रेस रिलीजेज और नंबर टंग प्रोग्राम पे सारे खड़े हो जाएं। ये बात नहीं है, देखें वो दरबारी नहीं है। हमारे पास मसला यह है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी बन गई है दरबारी। इनको जरूरत है बैठ के काम करने की, जो इन लोगों को काम आउटलाइन किए गए हैं, जो सिस्टम चलता है। लाइक फॉर एग्जांपल हंटिंगटन ने कहा था कि जी आप तब तक डेमोक्रेसी चला ही नहीं सकते जब तक आप लोगों के इंस्टीट्यूशंस उस लेवल पे नहीं है कि जहां पे वो सस्टेन कर सकें पावर का ट्रांजिशन फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट। अब यहां पे अगेन वी डिस्कस दिस अर्लियर एज वेल कि जब हम लोगों ने इलेक्शन करवाना होता है और ट्रांजिशन करनी होती है तो हम लोग अपना लब्धे फिरते हैं सारे मिलके कि कोई जी हम लोगों को वो ट्रांजिशन गवर्नमेंट के केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए बंदे चाहिए। सर केयर टेकर गवर्नमेंट में आप पंजाब में या सिंध में मजाक कर रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट जिसने आपके साथ बैठ के अपना 5 साल गुजारे हैं और वो आपका बुनियादी तौर पर 6 बजे शाम को मीटिंग में बैठा होता है और आपके तरीफें के पुल बांध रहा होता है, उसको आप केयर टेकर बना के कहते हो कि जी हम लोग ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने लगे और देखें जी इंस्टीट्यूशन बड़े स्ट्रांग हैं। अब इस तरह की हरकतें भी दरमियान में करनी है, फिर कहना है कि जी नहीं देखें ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो उसका काम ये है कि वो पॉलिटिशियंस को सुने। अब भाई पॉलिटिशियंस आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑन ऑल सिंगल थिंग्स, ब्यूरोक्रेट्स आर सपोज टू बी एक्सपर्ट्स ऑन स्पेसिफिक थिंग्स। उसका काम है टू प्रोवाइड एडवाइस एंड टू प्रोवाइड गाइडेंस टू ए पॉलिटिकल लीडर के सर देखिए दीज आर द ऑप्शंस, दिस इज द सिस्टम कैपेसिटी, ये इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी है, हम ये कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है, आप बताएं कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। अब ये जो आपका है ना सिनर्जी वाला जो फैक्टर है विद इन द पॉलिटिकल साइड एंड द ब्यूरोक्रेटिक साइड,
तो बताइए कि ये जो इसमें बड़ी सारी बातें आ जाती है। एक तो ये बताइए कि ये दुनिया में ब्यूरोक्रेसी का कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है कि नहीं?
सर हर मेजर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है।
और क्या कहते हैं वो?
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखें, जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है ना, लोग रियलाइज नहीं करते प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की पावर्स कितनी एक्चुअली लिमिटेड है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट फायर, सस्पेंड और डू एनीथिंग टू ए करियर ब्यूरोक्रेट इन द यूएस। ऑल ही कैन डू और ऑल शी कैन डू इज टू एसेंशियली चेंज द पोलिटिकल हेड ऑफ ईच वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूशन। सो सेक्रेटरी चेंज हो सकता है, बट उसके बाद जो बाकी स्टाफ है ना उसको तो वो हाथ नहीं लगा सकता।
बिल्कुल सही।
हाँ। ठीक है। यहाँ पे ये हाल है कि ख्वाजा आसिफ सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं कहता हूँ पुलिस का सर स्पाई भी है ना।
हाँ,
उसका भी ट्रांसफर कंट्रोल कर सकते हैं
वो, उस्ताद भी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल वो नर्स भी लगवाते
सर, नर्स को कंट्रोल कर। अब ये मुझे बताइए कौन सा लेजिस्लेचर चल रहा है जहाँ पे, अब सिंध के अंदर होता है, गुलाम अरबाब रहीम लोग जितने ये तीन भाई हैं, इन लोगों की अपना दो सीटें उधर थरपारकर के अंदर दो सीटें सर, ये लोग उस इलाके के अंदर मैं कहता हूँ मक्खी भी हिलती है ना ये उसको भी कंट्रोल करते हैं।
अच्छा चले, ये तो समझ गए, यानी कि ब्यूरोक्रेसी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि ब्यूरोक्रेसी को प्रोफेशनल होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल नहीं होना चाहिए, और क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इज द कीपर ऑफ द रूल्स, कीपर ऑफ द लॉज, ब्यूरोक्रेसी वो काम करती है सब, पॉलिटिशियन को ऊपरली सतह पर रहना चाहिए। अब हर पॉलिटिशियन कहता है कि जी मेरा काम है, जैसे मुझे कई दफ़ा कहा गया है कि भाई पॉलिसी बनाना उनका काम है, और मैं हमेशा रोता था, मैं कहता जी पॉलिसी बनाना आपका काम नहीं है, आप रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, आप पॉलिसी डायरेक्शन दें, बनाएगी ब्यूरोक्रेसी, आपने पॉलिसी डायरेक्शन देनी है, ब्यूरोक्रेसी ने तहकीक करके बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बड़ी सिंपल बात है, अब ये कहते हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, या जैसे सीपैक करना है, अब सीपैक यस आप करना चाहते हैं ज़रूर करें, बट ब्यूरोक्रेसी का काम है कि एक रिसर्च करके बड़े सारे पेपर्स निकाल के लोगों को बताए कि क्या हो रहा है, डिस्क्लोजर करे, ट्रांसपेरेंसी दे, और उनसे निगोशिएट करे प्रॉपरली। अब ये जब पॉलिटिशियन आपस में बैठ के काम करते, तो आज तक हम रो रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, तो क्या ख्याल है, ये बात सही है या ये गलत है?
सर बात जो है ना बिल्कुल 100% सही है कि देखें पॉलिटिशियन का काम होता है कि अपने मैनिफेस्टो की बुनियाद के ऊपर पॉलिसी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करे कि जी हम इस किस्म की पॉलिसीज चाहते हैं। ठीक है। जो ब्यूरोक्रेट होता है वो होता है टेक्निकल एक्सपर्ट, उसका काम होता है कि उसने बैठ के पॉलिसी उस डिजाइन या उस डायरेक्शन के मुताबिक क्रिएट करके ऑफर करनी है कि सर ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनमें से चूज करें। इसकी मुझे मिसाल देने दें, जापान 1960 से लेकर तकरीबन 1985 के दरमियान में चलाती थी एक मिनिस्ट्री, द सिंगल मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्री इन ऑल ऑफ जापानीज हिस्ट्री, उसका नाम था मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट एंड ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड इंडस्ट्रीज। ठीक है जनाब,
मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडस्ट्रीज,
वो मेटी वाली। अब मेटी जो थी, मेटी वॉज द सिंगल मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्री, और उसने बैठ के एसेंशियली जापान की ट्रेजेक्टरी आइडेंटिफाई की और चलाई फॉर डेकेड्स। ठीक है जनाब, किसी पॉलिटिशियन एलडीपी में, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी उस जमाने में भी पावर में थी, एलडीपी में से किसी पॉलिटिशियन ने कभी इंटरफेयर नहीं किया मास वाय every now and then taking credit for the kind of policies that were being made. Mitty hired the most sophisticated, brilliant minds in the world they could find who were Japanese or otherwise. Aur un logon ne mulk ki ek trajectory banayi. Theek hai janab? Ab aap aa jaye hamari Ministry of Commerce mein ya Ministry of Trade ke andar. Hamare paas na we cannot expect our minister to have the kind of understanding of free trade agreements ya detailed negotiation skills. और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर, उनमें से कितने लोगों की एक्सपर्टीज है इस मामले में। अब अगर वो पॉलिसी बना के ले भी आता है तो पॉलिटिकल प्रेशर के मुताबिक तो जनाबे वाला उसके अंदर 36 और चीजें आप ऐड करें, क्योंकि वो जी फलानी मिनिस्ट्री को ये चाहिए, फलाने बंदे को ये चाहिए, वो जी सीपैक, अब सीपैक मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी चला रही है अपने मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी चला रही है, फाइनेंस भी चला रही है, 36 लोग अंदर चले हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे जिन लोगों की एक्चुअली काम है ये करने वाली, वो लोग बेचारे कोने में बैठे हुए रो रहे हैं।
और इन्होंने एक पेपर ही निकाला। पर चले इसको छोड़े, आगे चले, मुझे बताएं कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है, जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस ठीक हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स कंप्लीट हैं कि नहीं, इनको इसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम, क्या इस्लाहात कर सकते हैं?
सर सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला जो इशू है ना, उसके ऊपर तो यानी हमारा सबसे बड़ा इशू जो है ना, वो हमारा एग्जेक्टिव ओरिजिनेट करता है लेजिस्लेचर से। हमारा बुनियादी मसला जो है ना, वो यहाँ पे आ जाता है कि या तो अगर वो ओरिजिनेट लेजिस्लेचर से करता है ना, तो फिर उसको लेजिस्लेचर से ऊपर निकल के देखना चाहिए कि उसने मुल्क को किस राह पे चलाना और किस तरीके से चलाना है। फिर उसको वो लेजिस्लेचर वाली मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा। हमारा एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर वाली मेंटालिटी से निकल नहीं पाता। दूसरा हमारा इशू ये होता है कि जब डिक्टेटर आता है या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती है, उसका मसला ये है कि क्योंकि उसने लेजिस्लेचर को कभी समझा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव की बेस पे चलाती है, वो लेजिस्लेचर को अकाउंट में ही नहीं लेके आती। ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ पावर्स का इशू ये है कि क्लियरली हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, बट उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ के रद्दी कर दिया हुआ है LFO की बुनियाद के ऊपर, वो फलाना NRO ले आए। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स अगर एक ज़माने में लिखी भी गई थी, तो वो अब एग्जिस्ट सच्ची बात है करती नहीं है। हमारा इशू ये है कि अगर हम लोगों ने इसको वेल डिफाइन करना है, तो देन वी हैव टू ऑल्सो स्ट्रेंथन आवर कोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक पूरा का पूरा मेजर कॉन्सेप्ट है, इट्स अ मेजर ऑफ डेमोक्रेसी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हम लोग यानी अपनी ऑन डिमांड ना फिर करें ना, जुडिशरी ने अगर इंडिपेंडेंट रहना है तो फिर ये थ्रू आउट इंडिपेंडेंट रहा करे, ये ना किया करे कि चौथे साल में जाके हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये पावर में आ जाती है। इंडिपेंडेंस पे थ्रू आउट चलनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की सेपरेशन ऑफ पावर इज क्रिटिकल। दूसरी सेपरेशन ऑफ पावर जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट,
लोकल गवर्नमेंट, बिल्कुल
हाँ जी, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर इज द मोस्ट मेस्ड अप, एज इन कि वो इतने ग्रे एरियाज में चल रही होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वो एक डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है। अब उस डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन में वो चेयरमैन है, उसमें MNA भी है, दो MPA भी हैं, फिर काउंसलर भी हैं, फिर ज़िला नाजिम भी है, फिर उसके अंदर जो उसके अंदर एक शहर भी आता है, उस शहर का अपना नाजिम है। अब ये चार पांच लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, और ये चार पांच लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। अब इसमें से किसका काम है सर्विस डिलीवरी, किसका काम है पॉलिसी डेवलपमेंट, किसका काम है लेजिस्लेट करना? क्योंकि ये सब के सब मिलके सड़कें बनवाते रहते हैं, नालियां डलवाते रहते हैं, या बाकी करते रहते हैं। क्योंकि द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन, हाईली एजुकेटेड। वो बेचारा खुद वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स ही इज बीन ट्राइंग टू डू इज ले आउट एग्जैक्टली कि जी मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्योंकि इट इज सो मेस्ड अप एट दैट लेवल, जो आपका डिस्ट्रिक्ट अपना चेयरमैन का लेवल है, कि वो बेचारा आधे से ज्यादा टाइम ये कम्पीट कर रहा होता है फ्रॉम अदर MNAs, MPAs या अपना डिस्ट्रिक्ट नाजिम जो शहर का नाजिम है, कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन कितनी है, तेरी ज्यूरिसडिक्शन कितनी है, मेरा काम कितना करने वाला है, मेरा डेवलपमेंट बजट कितना है, व्हाट डू आई वांट टू डू, और मेरी प्रायोरिटी क्या
है। अच्छा, इससे एक और चीज़ निकलती है जो मैं एक चीज़ देखता हूँ। अगर मैं देखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से, अब उम्र हो गई तो हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ है, कि जो डेमोक्रेसी है हम उसको बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। अगर डेमोक्रेसी को हमने फॉलो करना है, जैसे आपने कहा एथन से डिबेट चल रही है और एसेंशली एक यूरोपियन डिबेट है, और अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री देखें तो डेमोक्रेसी में हमेशा एक चीज़ रही है। एक नंबर एक तो सोचने वाली बात है, डेमोक्रेसी बहुत तक्का स्टार्ट रही है, ये कोई नहीं कि जैसे हमारे मुल्क में चलता है कि बस एक दफ़ा बैठ के तो इलेक्शन कराते जाओ डेमोक्रेसी, कोई नहीं ऐसी बात। डेमोक्रेसी धक्का स्टार्ट रही है, उसमें जनाब फ्रेंच रेवोल्यूशन भी शामिल है, उसमें जनाब क्रॉमवेल भी शामिल है, बड़े लोगों के सर कलम किए गए, बड़े एम्परर्स आए, फिर उनको उतारा गया, फिर वोटिंग लाई गई, फिर वोटिंग ख़त्म हो गई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फ्रांस की को पांच कॉन्स्टिट्यूशंस बन चुकी हैं। तो डेमोक्रेसी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा आपने कर दिया तो वोटिंग करते रहे। नंबर दो जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि उनकी जो डेमोक्रेसी की सारी स्ट्रगल थी, इट वॉज़ अ स्ट्रगल ऑफ वैल्यूज़, उनके अंदर वैल्यूज़ का बहुत काम था। ठीक है ना जी, वैल्यूज़ का क्या मतलब कि जी वो सारी थी फ्रीडम पे, लिबर्टी पे, फलानी चीज़ों पे, कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि नहीं, जी राइट्स क्या हैं, इन चीज़ों पे। हमारी जो डेमोक्रेसी है, ये ली क्वान यू ने एक दफ़ा कहा था कि आपकी डेमोक्रेसी जो है वो तो इज़ एन ऑक्शन ऑफ रिसोर्सेज दैट यू डोंट हैव। हम तो डेवलपमेंट पर डेमोक्रेसी कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर क्या डेमोक्रेसी बनती है? डेवलपमेंट क्या हुकूमत का काम है?
सर ये आपने बड़े मजे की बात की है, इसके अंदर जो है ना तीन या चार अपोजिंग ओपिनियंस आती हैं, बट उनमें से जो सबसे जो कंसेंसस वाला पॉइंट है ना जिसके ऊपर सारे एग्री करते हैं वो ये है कि गवर्नमेंट का काम, डेमोक्रेसी का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं है. इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट इज क्लोजली related to democratization. In certain cases, it is correlated to democratization. Lipset, ek economist hai, mashallah, bahut bade. Lipset ne kaha tha ki ji, jab tak democracy aap badhate jayenge ya increase karte jayenge uski strength, uske saath there is a correlation with development. Theek hai ji, socio-economic conditions generally improve karti hain jab democracy aati hai. This is a cause and effect thing. Theek hai ji, correlation hai ki ji अगर ये भी होगा तो फिर ये हो सकता है. सही है. लेफ्टविच ने एक किताब लिखी थी काफी एक्सटेंसिव सर्वे के बाद, विच सेड एसेंशियली कि जिन जिन मुल्कों के अंदर डेमोक्रेसी है वहां पे लेवल ऑफ डेवलपमेंट जब शुरू किया जाता है ना उसका रिजल्ट बेहतर है एज अपोज टू कंट्रीज जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है. डेवलपमेंट इज नॉट कोरिलेटेड, यानी डेवलपमेंट डज नॉट मीन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी डज नॉट मीन डेवलपमेंट, बट इफ डेवलपमेंट इज देयर उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है. और डोनल ने लैटिन अमेरिका की स्टडी के अंदर कैटेगोरिकली कहा था कि सबसे बड़ी बात जो चेंज हुई थी लैटिन अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन के साथ वो स्टेट कैपेसिटी का यूज था. स्टेट कैपेसिटी जब बढ़ती है तो उसका डेवलपमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है. मसला यह है कि स्टेट कैपेसिटी उन एरियाज में सिर्फ तब बढ़ती है जब आप उसको एक ऑटोक्रेटिक रूल से डेमोक्रेटिक रूल की तरफ जाते हो और वो इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाते हैं. अब मसला सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट को कहना कि जी गवर्नमेंट नौकरियां क्रिएट करे एक इंतहाई बेवकूफाना किस्म की डिमांड है. मुझे याद है आपने एक रिपोर्ट अपना इंस्टीट्यूट की थी जिसके अंदर यू हैड अ फिगर ऑफ कि जी पाकिस्तान को हर साल जितना बंदा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोगों को तकरीबन 30 लाख नौकरियों की जरूरत है. बिल्कुल जरूरत है. और हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं 7.5-8 लाख नौकरियां पर ईयर. और गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना कि हम लोग 20 लाख नौकरियां वो आसमान से उतार के लेके आएंगे कहीं से, यानी किसी दरख्त से निकालेंगे, ये एक इंतहाई बेवकूफाना बात है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारी एक्सपेक्टेशन आवाम की ये है क्योंकि वो कराची में देखते हैं या अपना पंजाब में देखते हैं कि जी वो एक पार्टी अगर पावर में आती है वो सारे के सारे अपने बंदों को नौकरियां दिलवा देती है उधर पोर्ट ट्रस्ट के अंदर, या उनको सबको नौकरियां लगवा देती है अपना हॉस्पिटल्स के अंदर या स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर. वो हैंडआउट्स जो है ना वो नौकरियां नहीं है, वो दैट्स पैट्रनेज. और ये जो डिस्टिंक्शन है ना हम लोग इस डिस्टिंक्शन को समझ नहीं पाते. हम समझते हैं नहीं, इट्स द सेम थिंग.
बिल्कुल सही कहा. देखिए ये जो आपने बात की ना बड़ी मजेदार बात है. आपने पहले बात कही थी कि जी पार्टीज जो हैं वो आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं है या आइडियोलॉजिकली डिफ्रेंशिएटेड नहीं है या उनकी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं. होता यह है कि हर पार्टी मेट्रो बस बनाने को फिर रही है, हर पार्टी जनाब वो करने को. मैं जब प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन था तो जनाब मेरे पास बहुत MNAs आते थे कि जी मेरा प्रोजेक्ट मेरा. मैंने कहा जी आपका प्रोजेक्ट कौन सा. एक MNA से तो मेरी बाकायदा लड़ाई हो गई. मैंने कहा जी आपके प्रोजेक्ट की मैं बात ही नहीं करूँगा, घर जाके बीवी से बात करें. तो कहता है ये क्या मतलब हुआ. मैंने कहा जी ये सिर्फ नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ होते हैं, आपका प्रोजेक्ट कोई नहीं चलेगा. ठीक है. फिर मैंने बड़ी कोशिश की कि जी इनके प्रोजेक्ट खत्म किया जाए. ये जो डेवलपमेंट में पड़ गए ना ये पॉलिटिक्स से हट गए. पॉलिटिक्स का मतलब डेवलपमेंट नहीं है. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि डेमोक्रेसी डज क्रिएट मोर ग्रोथ एंड जॉब्स, बट इफ इट इज डेमोक्रेसी ऑफ द प्रॉपर काइंड, नॉट इलिबरल डेमोक्रेसी लाइक फरीद ज़करिया पुट इट. ठीक है ना. वो ये होता है कि जी डेमोक्रेसी अगर ऐसी हो जो कि कोशिश करे लोगों को राइट्स दिलवाना, जो कि कोशिश करे लोगों को एक ऐसा फ्रेमवर्क देना जिसके अंदर सिक्योरिटी हो, जो कि कोशिश करे जिसके अंदर ऐसी ऐसा फ्रेमवर्क हो जहां की कॉन्ट्रैक्टिंग बड़ी अच्छी हो, जहां की जुडिशरी बड़ी अच्छी हो, जहां के सब काम बड़ा अच्छा हो, लाइसेंसिंग जिसको हम सब इकोनॉमिक्स से कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी तो अपने आप ग्रोथ हो जाएगी. और जो अमरीका में हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, और इसलिए अमरीका सबसे आगे निकल गया. अब मसला ये आ जाता है कि हमारे तो पॉलिटिशियंस को ये बहमो गुमान में भी नहीं है. प्राइम मिनिस्टर आता है वो तो कहता है मैं तो अब बादशाह हूँ, मैं जो मर्जी करूँ भाई, मैं क्या है तुसी कर लो, ये मेट्रो बनाओ जी बनाओ, जनाब ये फ्लाइंग चीज बनाओ जी बनाओ. भाई हज़ार बारी कहा है कि आपका काम बनाना नहीं, आपका काम ज़रूर कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप ज़रूर कहें जी दो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर आप लगाएं टीम जो अच्छी तरह उसको डिज़ाइन करे, जो अच्छी तरह उसको बनाए, सब अल्टरनेटिव देख के और कॉस्टिंग करे, और फिर आपको दे, वो टेक्नोक्रेटिक काम हो गया। बाकी आपका काम है डायरेक्शन देना, नीचे काम है टेक्नोक्रेटिक। तो आपने जैसे कहा ब्यूरोक्रेसी आनी चाहिए। अब ये बताइए कि चलें ये तो हो गया, अब सेपरेशन ऑफ पावर्स पे अगर हम आएँ दोबारा, मैं उसको बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि कैसे किया जाए। देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर से निकलते हैं, बट अगर आधे पार्लियामेंटेरियन को उन्होंने मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, फिर एक और चीज़ है, 14th अमेंडमेंट पास कर दिए जहां वो कहते हैं कि पार्टीज़ के, अब पार्टीज इतनी सोलिडिफाई हो गई हैं, कोई बंदा अपनी मर्जी से वोट ही नहीं कर सकता। जैसे अब आजकल तो चल रहा है यहाँ ड्रामा ट्रंप का हेल्थ केयर का, अगर 14th अमेंडमेंट यहाँ होती तो आज हेल्थ केयर पास हो गया होता। ये क्योंकि 14th अमेंडमेंट नहीं है तो 3-4 रिपब्लिकन अड़े हुए हैं, कहते हैं हमने हेल्थ केयर नहीं पास होने देना, जिसकी वजह से शायद अभी भी ना हो, ठीक है ना। तो इन्होंने तो एलिमिनेट कर दिया है वहाँ के जी ये चीज़। नंबर दो जो मुझे बड़ी हैरानगी की बात लगती है कि ये की मिनिस्ट्रीज अपने हाथों में कैसे रख सकते हैं। अब ट्रंप कोशिश कर रहा है इसको निकालने का अटर्नी जनरल सेशंस को, उसके हाथ जो रुके हुए हैं वो ये है कि जी उसको रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही, क्योंकि वो अपने पास नहीं रख सकता ये चीज़। हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं ही नहीं, क्या किया जाए इसका?
सर वही बात है ना, ये एक यानी घिनौने मजाक पे घिनौना मजाक है ना। हमारे पास तो ये है कि आप पकड़ के आधे लोगों को मिनिस्टर बना देते हैं। अब वो मिनिस्टर देखें, ये अमेरिकन पॉलिटिकल लिटरेचर के अंदर ना एक्सटेंसिव काम होता है इस चीज़ के ऊपर, और मैं कहता हूँ लाइब्रेरीज के लेवल की किताबें लिखी जा चुकी हैं ऑलरेडी, कि जनाबे वाला जो एक पॉलिटिशियन होता है उसका नंबर वन इंटरेस्ट होता है टू गेट री इलेक्टेड, ठीक है जी। पॉलिटिशियन का काम है री इलेक्ट होना, उसका काम ये नहीं है कि आपके घर में रोटी हो। अगर आपके घर में रोटी होगी, चांसेस ऑफ हिम और हर गेटिंग री इलेक्टेड आर हायर, बट उसकी ड्यूटी ये नहीं है। हमारा इशू ये है कि हम लोग उसको अगेन कन्फ्लेट करना शुरू कर देते हैं कि जनाब 14th अमेंडमेंट जब हम लोगों ने पास की है उसमें पकड़ के आपने टेक्निकली सर पार्टियां तो स्ट्रेंथन नहीं की ना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। हमने बुनियादी तौर पे 6 या 7 मेजर फैमिली बिजनेस स्ट्रांग किए, ठीक है। अब उस फैमिली बिजनेस के अंदर अगर हम लोगों ने एम्प्लॉयज को जो प्रोटेक्शन हासिल थी कि दे कैन बेसिकली अपना गो अगेंस्ट द फैमिली बिजनेस, वो हम लोगों ने प्रोटेक्शन हटा दिए, उसका रिजल्ट ये है कि चौधरी निसार को टेक्निकली पार्टी छोड़नी नहीं पड़ रही है, वो सियासत से ही रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये डिफरेंट काम होता तो चौधरी निसार खड़े होकर कहता कि जी भाई मैं डिसएग्री करता हूं पब्लिकली, मैंने नहीं करना, ये बड़ी बेवकूफाना स्ट्रेटजी है। जब आप कन्फ्लेट कर देते हैं डिसएग्रीमेंट को या पॉलिसी चॉइस डिफरेंशियल को विद डिसलॉयल्टी, तो वो डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग तो नहीं है ना सर, वो तो फिर एक घिनौना मजाक है ना कि जी अगर आपकी डिसलॉयल्टी आप बिलीव नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर, मेरा नून लीग से बहुत करीबी ताल्लुक रहा है, अब आई स्टिल हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी एंड आई विल कंटिन्यू टू हैव दैट रिस्पेक्ट, बट एट दिस टाइम जब भी मैं कोई क्रिटिकल बात करता हूँ ना, मुझे आगे से कम 6 या 4 रिस्पॉन्सेज आते हैं कि जनाबे वाला आप जो हैं वो डिसलॉयल हो गए हैं ब्ला ब्ला। भाई मैं डिसलॉयल नहीं हो गया ना, मेरी लॉयल्टी मुल्क के साथ है। द आइडिया दैट सम हाउ इफ यू आर ए पार्ट ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी योर लॉयल्टी इज टू दैट पोलिटिकल पार्टी और दैट फैमिली ओवर द कंट्री इज स्टूपिड।
नहीं, वो तो फिर वही बात आ गई ना, जो बादशाहों वाली बात आ गई ना, लॉयल्टी तो बादशाहों के साथ होती है, पार्टी के साथ भी नहीं होती, ठीक है।
देखिए, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी लिव इन अ रिपब्लिक, टेक्निकली वी लिव इन अ रिपब्लिक, रिपब्लिक के अंदर मेरी लॉयल्टी इज विद द रिपब्लिक,
ठीक है, एंड यू हैव द राइट टू डिसएग्री
एंड आई हैव द राइट टू डिसएग्री। अब 14th अमेंडमेंट जैसी चीज को आपने ला के रख दी है जिसकी वजह से आपका डिसएग्रीमेंट कैन ओनली हैपन जब आप कंप्लीटली हर चीज छोड़ के साइड पे हट जाए, देन यू कैन डिसएग्री।
देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में हम बुनियादी तौर पे, हमारी कल्चरल वैल्यू ये नहीं बनी कि हम डिसएग्री कर सकें। आपने देखा है कि अगर डिसएग्रीमेंट कोई होती है, जैसे मैं ट्विटर फेसबुक पे देखता हूँ तो लड़ाइयों में डिसएग्रीमेंट होती है, खानों पे चले जाएं तो डिसएग्रीमेंट होती है, तो लोग मुक्कों पे उतर आते हैं। डिसएग्रीमेंट का मतलब तो ये होता है कि भाई आप कहें हाँ भाई ठीक है, जैसे उसने लॉर्ड एक्टन ने या किसी ने कहा था भाई आई डिसएग्री विद यू बट आई विल डिफेंड योर राइट विद माई लाइफ टू से इट, ठीक है ना जी, आप जो मर्जी करें, ठीक है। अब पॉइंट ये कि हम डिसएग्रीमेंट को मानते ही नहीं। पर एक और मुझे बात बताएं, आप डायनेस्टीज की बार बार बात कर रहे हैं और मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि डायनेस्टीज हैं, अब क्या हम डायनेस्टीज को लिमिट करने के लिए कुछ चीज़ें नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है दो चीज़ें तो हम कर सकते हैं, जो मैंने अपनी किताब में भी लिखी है, कि एक तो जी हम टर्म लिमिट्स तो लगा सकते हैं कि जी दो अमेरिकन प्रेसिडेंट की टर्म लिमिट है, यहाँ मिल्टन फ्रीडमैन एक बंदा था और हायक था जिन्होंने बार बार कहा था कि यहाँ टर्म लिमिट्स लगाओ, भाई आज तक डिबेट हो रही है कि कांग्रेस की भी टर्म लिमिट्स होनी चाहिए। चले हमें यानी अब मैक्सिको में प्रेसिडेंट की टर्म एक लिमिट है, फ्रांस में भी लिमिट है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि हम टर्म लिमिट लगा सकते हैं और लगाई भी थी, इन्होंने उड़ा दी। पर अगर हम डिमांड करें तो टर्म लिमिट्स तो आ सकती हैं कि हर बंदा जो पार्लियामेंट में आता है दो टर्म ज़्यादा नहीं रह सकता। नंबर तीन, मेरा ख्याल इंडोनेशिया में उन्होंने लगाने की कोशिश की थी, पता नहीं सक्सीड किया है कि नहीं किया, उन्होंने फैमिली लिमिट्स भी लगा दी। उन्होंने कहा जी थर्ड कज़न तक बंदा, एक ही बंदा शामिल हो सकता है एक फैमिली में, थर्ड कज़न में एक ही बंदा शामिल हो सकता है, थर्ड कज़न से आगे हम फैमिली की लिमिट नहीं डिफाइन करते, ठीक है। तो हम फैमिली लिमिट भी लगा सकते हैं। क्या मतलब है कि जी एक ही फैमिली से दस बंदे पार्लियामेंट में बैठे हो, ये कोई रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि नहीं?
सर ये पॉसिबल है, इनके ऊपर देखें पॉसिबल है, एग्री कोई नहीं करेगा इनमें से। मसला ये है कि देखें एक फैमिली को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो बंदा अगर रिप्रेजेंट करता है ना, मैं मानने को तैयार हूँ कि जी हमारी फैमिली के पास इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, फॉर इंस्टेंस कि जी हम लोग ये दो नेशनल असेंबली की सीटें जो हैं हम लोग हमारे बारे में आती हैं तो हम लोगों ने क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव करने हैं, वो और बात है, ठीक है जी। बट ये कहाँ की अब स्टोरी हुई कि मेरा वो जी चाचा वहाँ पे लड़ रहा है, मेरा मामा वहाँ पे लड़ रहा है, मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ, मेरी बहन यहाँ से आ रही है, और वो जी रिजर्व सीटों के ऊपर मेरी आधी जो अपना खवातीन है खानदान की वो आ गई।
बिल्कुल।
अब यानी ये रिजर्व सीटों वाली जो गेम होती है इसके ऊपर तो माशाल्लाह कोई बैठ के किसी दिन अपना डिटेल में स्टडी करे, आधी से ज़्यादा रिजर्व सीटें हर पोलिटिकल पार्टी के अंदर एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस की जो फैमिली मेम्बर्स खवातीन हैं वो ले रही हैं, ठीक है। अब उनमें से कुछ जेन्युइनली स्पीकिंग काफ़ी एजुकेटेड भी हैं, काफ़ी केपेबल भी हैं, उनका अपना माइंडसेट भी है, और वो दोज आर पॉजिटिव पीपल टू हैव। बट आधे से ज़्यादा वो भी ख़वातीन हैं जो लिटरली सिर्फ MNA या MP इस वजह से हैं क्योंकि वो जी मेरा भाई, मेरा हस्बैंड, मेरा फलाना। अब उस किस्म के जो लोग पार्लियामेंट में आ रहे हैं, आप रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग एक्चुअली लेजिस्लेट करने आ रहे हैं वहाँ पर? वो यानी अगर पूछा जाए कि भाई आप क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दे डोंट हैव टू फाइट फॉर इलेक्शंस, दे डोंट हैव टू फाइट फॉर वोट्स, उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी कोई नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन भी कोई खास नहीं है, वो किस खाते में आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर?
पर मेरा ये कहने का मतलब ये डिबेट तो हमें जारी करनी चाहिए ना कि भाई आप टर्म लिमिट्स लगा सकते हैं, आप फैमिली लिमिट्स लगा सकते हैं, ठीक है,
लगाएं
आप,
ना
आप पार्टी में लिमिट्स लगा सकते हैं कि भाई जान एक बंदा अगर एक फैमिली अगर इस पार्टी में आप कमिट करें आप किस पार्टी में, आप ये नहीं कर सकते यू नो इस तरह चलें वो चलो उसको छोड़ देते हैं। बट ये दो चीज़ें तो आप कर सकते हैं। नंबर तीन जो आप चीज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जी देखिए ये प्राइम मिनिस्टर साहब या कैबिनेट का जो है साइज, मेरा तो ख्याल है कैबिनेट का साइज जैसे अमेरिका में है इट्स डिटर्मिंड प्रॉपरली। इनको एक डिपार्टमेंट इन्होंने 1949 से इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया होमलैंड सिक्योरिटी, और होमलैंड सिक्योरिटी भी इनको एक डेढ़ साल डिबेट के बाद बनाया। हमारा प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा है खुद बैठ के वहाँ कि वो अपनी मर्जी से जब मर्जी पोर्टफोलियो बढ़ा देता है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आधा पार्लियामेंट लग जाता है पोजीशंस में क्योंकि उसके साथ पर्क्स और प्लॉट्स वगैरह मिल जाते हैं उनको, ठीक है। अब ये तो आप लिमिट कर सकते हैं कि भाईजान कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दें कि 10-15 ये कैबिनेट पोजीशंस हैं, इससे आगे बढ़ नहीं सकती बात, इससे आगे प्राइम मिनिस्टर नहीं बढ़ा सकता।
सर प्राइम मिनिस्टर के पास देखें पहली बात है, प्राइम मिनिस्टर के पास तो ये राइट ही नहीं होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से बढ़ाता फिर,
बिल्कुल सही,
ये होना ही नहीं चाहिए राइट। जो गवर्नमेंट की कैपेसिटी है ना वो वेल डिफाइंड होती है। ये हम लोगों ने मजाक बनाया हुआ कि चुंगे के अंदर आके जी दो डिपार्टमेंट नए खड़े कर दो, एक डिपार्टमेंट शट ऑफ कर दो, इसको मर्ज कर दो, नहीं, ये वहां पे अच्छे खासे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, वो साला साल से काम चल रहे हैं वहां पे। आप पकड़ के अपनी विम्स एंड विशेस के ऊपर बंदे फिट करने के लिए मिनिस्ट्रियां बनाते या घटाते नहीं जा सकते। पहली बात ये वेल डिफाइन करने की जरूरत है कि भाई इतनी मिनिस्ट्रियां हैं, इतनी रहेंगी, अगर नया डिपार्टमेंट बनेगा उसका प्रोसीजर ये है। ये नहीं हो सकता कि आप लोग अपनी मर्जी से बनाते जाए। सेकेंडली टर्म लिमिट्स वाली जो बात आप कर रहे हैं ना, वो टर्म लिमिट्स वाली बात हमें लाजिम है। मसला ये है कि उस टर्म लिमिट्स वाली बात हम लोगों के पास हर लेवल पे होनी चाहिए, और वो टर्म लिमिट्स ना लगाएं, वो एक थोड़ा सा उसको अगर हम लोगों ने करना है वो एक स्मार्ट तरीके से भी हो सकता है कि साल लगा दें कि जी कंबाइंड आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव 8 साल से ज्यादा नहीं रह सकते.
गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट.
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बना देना, ताकि वो चाहे सूबाई असेंबली हो, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो सेनेट हो.
गुड पॉइंट.
आप 8 साल से ज्यादा पब्लिक रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, उसके बाद किसी और को बारी नहीं.
गुड पॉइंट, गुड पॉइंट. ठीक है. अच्छा, एक और चीज बताइए कि जो मैं देख रहा हूँ, एक और चीज मुझे ख्याल आ रहा है. फेडरलिस्ट पेपर्स जब मैंने देखा तो उसमें मेडिसन ने बड़ी मजेदार एक बात कही. उसने कहा कि जी हमने सोचा कि हम कितनी टर्म रखें. उसने कहा जी प्रेसिडेंट की टर्म हमने सोचा 4 साल रखते हैं, क्योंकि चलो जरा थोड़ा सा टाइम दे दें उसे. पर कांग्रेस की टर्म उसने कहा हमने 2 साल रखी, हमने बड़ा सोचा 3-4. उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा कि इनको बार बार आना चाहिए इलेक्शन के लिए, इनको जम के नहीं बैठ जाना चाहिए. उसने 2 साल रखी. सेनेट की टर्म उन्होंने 6 साल रखी, ठीक है, और वो भी हर रोटेशन के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा सेनेट को ज़्यादा ज़्यादा टाइम चाहिए क्योंकि वो कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेंगे, बट ये नीचे से रखेंगे. गवर्नर्स वगैरह की टर्म्स अलग हैं. तो उसका मतलब ये है कि यहाँ हर साल इलेक्शन होती है, हर साल इलेक्शन होती है. मैं श्रीलंका में था, मैं देख रहा था, वहाँ भी हर साल इलेक्शन होती है. इंडिया में भी बहुत इलेक्शन होती हैं. हमारे यहाँ 1-5 साल के लिए जम के बैठ जाते हैं. तो अव्वल तो मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ. नंबर एक तो क्या टर्म 5 साल होनी चाहिए? मेरा तो ख्याल है टर्म कम होनी चाहिए, 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 5 साल बहुत लंबी टर्म है, हम थक जाते हैं. नंबर दो, अगर ये प्रोविंसेस की इलेक्शंस अलहदा हों, लोकल गवर्नमेंट की अलहदा हों, ताकि हर साल हमारे यहाँ भी एक इलेक्शन हो, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि उनकी एक किस्म का पोल मिले उनको प्रॉपर कि क्या हो रहा है दुनिया में. क्या ख्याल है इसके बारे में?
सर, ये जो आपने बात की है ना, ये दिल वाली बात की है आपने, कि मसला ये है कि इन लोगों को अगर एक्चुअली पब्लिक में जाना पड़े ना ऑन अ रेगुलर बेसिस, इनके स्टैंडर्ड्स ही और हों और ये बातें और करें. वहाँ पे अब बात ये है कि अगर इनको लोकल इलेक्शन अल्टरनेटिव यूएस पे करना हो, देखें पहली बात है, लोकल गवर्नमेंट को 2 साल से ज़्यादा टिकना ही नहीं चाहिए, ठीक है जी. लोकल गवर्नमेंट को 2 साल पे टिकना चाहिए. आप सूबाई असेंबली को मैक्सिमम 4 साल तक टिकना चाहिए. और इनकी इस तरह की हम लोगों को सिस्टम इस तरह का करने की जरूरत है कि जहाँ पे ओवरलैपिंग हो ना, कि से फॉर एग्जाम्पल अगर 2018 के अंदर नेशनल इलेक्शन है तो जी 2019 के अंदर प्रोविंशियल इलेक्शन हो, 2020 के अंदर आप अपना वो करें जो लोकल बॉडी इलेक्शन है. लोकल बॉडी इलेक्शन 2 साल की रोटेशन पे करवाएं, आप सूबाई असेंबली का इलेक्शन 4 साल की रोटेशन पे कराएं, नेशनल असेंबली का इलेक्शन 3 साल की रोटेशन पे कराएं, और अगर आपने सेनेट को 5 साल पे रखना, 100 बिस्मिल्ला रखें 5 साल, ठीक है. बट इन लोगों को कॉम्पिटिशन तो मिले ना. और
ये तो 5 साल के लिए जम के बैठ जाते हैं, जम के बैठ जाते हैं 5 साल के लिए, कोई हमें फिक्र ही कोई नहीं.
सर वही बात है ना, एक दफा आप अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखें ना, वो 3 भाई हैं, अपना 2 भाई और बाप, जो बाप है उनके माशाल्लाह ये वकार खान लोग वाकैस वाले, ये अपना खैबर पख्तूनख्वा में जाके सीटें खरीदते हैं ना. अच्छा, अब अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखें, मैं एक दफा बैठा हुआ था इनके पास, अपना भाइयों के पास, दे आर वेरी नाइस पीपल, वेरी फाइन जेंटलमैन, रियली नाइस पीपल. इनसे बैठ के आई वाज जेन्युइनली क्यूरियस. And they were like, कि यार आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखो इस बात का. जितना पैसा है वो बुनियादी तौर पे एक अपस्टार्ट कंपनी के लिए होता है, ठीक है. इसको बिजनेस के तौर पे अगर आप बैठ के इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, तो जनाबे वाला अगर मैंने समझ लें कि 40 करोड़ रुपए में भी एक सीट उठा ली है ना, फिक्टिशियसली हम लोग अमाउंट सेट कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने उठा लिया तो उसका मतलब है कि अगले 6 साल के लिए मैं सेनेटर हूँ, ठीक है. 6 साल के सेनेटर के अंदर आप जरा सेनेट का बजट खोल के देखें कि एक सेनेटर को डिस्क्रेशनरी फंड कितना मिलता है, ठीक है जनाब. उसको 6 से ज़रब दे के देखें, मुझे आप फिर उस फाइनल फिगर की बुनियाद पे ये बताएं कि 40 करोड़ रुपया में जाके जो खर्चता हूँ, इज दैट कम्प्लीटली वर्थ इट और नॉट. और सेकंडली मुझे वो दूसरा बिजनेस निकाल के दिखा दें जिसके अंदर आपको रेट ऑफ रिटर्न इतना है मिलता हो.
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. हाँ, अच्छा, एक ये तो क्या कहते हैं, बड़ी मजेदार बातें हो गई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई है इलेक्शन में. एक आखिरी चीज़ जो रह गई है, खैर बहुत चीज़ें रह गई हैं, मेरा ख्याल एक और करना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल है इसको सॉर्ट आउट करना. जितना टाइम हमारे पास है हम ऑलरेडी काफ़ी कर गए, कि अगर गौर करें तो हमारे पास इलेक्शन कमीशन का कोई निज़ाम नहीं है. इलेक्शन कमीशन इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, उसका सेक्रेटरी DMG से आता है और वो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर का मतहत है. उसको ट्रांसफ़र जब मर्जी करें, उसको प्लॉट कितने दें, उसको घर कैसा दें, उसको गाड़ियाँ कैसे दें, उसको कौन सी बोर्ड मेंबरशिप दें, ये भी तो एक बहुत बड़ी डिवाइस है जिससे कंट्रोल करते हैं. तो क्या हमें इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल अलहदा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन आफ्टरऑल अगर इनके हाथ में है तो फिर तो उसके अंदर तो सब गड़बड़ हो सकती है.
सर इलेक्शन कमीशन जो है ना उसका मसला वही आ जाता है जो हम लोग केयर टेकर गवर्नमेंट वाली बातें कर रहे थे. इलेक्शन कमीशन का इशू ये है कि उसको कम्प्लीटली ऑटोनोमस होने की जरूरत है फ्रॉम ऑल साइड्स. इलेक्शन कमीशन प्योरली टेक्नोक्रेटिक हो और उसकी भी जो रोटेशन है ना उसके करने के तीन या चार तरीके हैं. या तो उसको कम्प्लीटली टेक्नोक्रेटिक कर दें या उसको कम्प्लीटली पोलिटिसाइज कर दें. उसका क्या मतलब है कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन को कम्प्लीटली पोलिटिसाइज करना है तो सारी पार्टियां जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टियां जो कि 2% से ज्यादा पॉपुलर वोट लेती हैं उनको सारों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव बैठाएं. उन्हें कहें हाँ भाई अब बैठ के आप लोग रूल और रेगुलेशंस लिखो. ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसके ऊपर सारे एग्री करते हैं इसकी बेस पे इलेक्शन करवाना है. कोई चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना हो आप उसकी बजाय यूं करें कि आप काउंसिल बना दें. काउंसिल आगे उसको प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी पकड़ाएं वो ब्यूरोक्रेसी काम करे. रिफॉर्म वहां पे करना इशू नहीं है. मसला अगेन गोज बैक टू द सेम थिंग करना नहीं चाहते. यानी क्यों करें अब.
अच्छा मेरा ख्याल अदनान साहब ये बहुत लंबी बात हो गई है तो पर बहुत मज़ेदार बातें हुई हैं बहुत अच्छी बातें हुई हैं. मेरा ख्याल ये हमें एक दो हफ्तों में फिर करना पड़ेगा क्योंकि
सर मुझे भी यही लग रहा है. थैंक यू सो मच.
बहुत सारी आपसे बातें सीखनी हैं. आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट डिस्कशन. थैंक यू. आपको आखिरी बातें कहना चाहेंगे.
Dang sir, may like I'm just glad that we're doing this. I'm thank you for actually reaching out and inviting me over to do this. I'm really thankful that you let me be on this with you and it's an honor and thank you.
We'll do it again.
There's so much more to talk.
Soch Bachar ke saath mera naam Nadeem Ul Haq hai
aur mera naam Anjum Altaf hai.